بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، محترم مقدس مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے پورے ہفتے کے اختتام میں ہمیں کچھ وقت کے لیے لوگ دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے مشائخ اہل اللہ حضرات، ان کی کتابیں، ان کے خلاصے، بیانات، تو کچھ چیزیں ایسی ہمارے کان میں پڑ جائیں، ہمیں پورے ہفتے کے لیے توانائی مل جائے، دین کے کام کے لیے شوق ہو جائے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی، اللہ کا شکر، اللہ کا شوق، اللہ کی محبت، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے قدردان ہیں اور مہربان ہیں. اللہ کا ایک نام ہے شکور، شکور، اور اللہ کا ایک نام ہے کریم، بغیر اس کوالیفیکیشن کے دیتے ہیں، بادشاہ دیتے جاتے ہیں. ہمارے کمزور چھوٹے چھوٹے عمل پہ نیکیوں کے پہاڑ دیتے ہیں. یہ مثالیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور ہم جتنی بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرماتے ہیں. حالانکہ اللہ کے دربار میں پوری زندگی میں ایک دفعہ ذکر کافی تھا کہ کوئی فلاں بندے نے اللہ کو یاد کیا، تو رجسٹر میں لکھ لیا جاتا. وہ فرمائے جتنی دفعہ تم ذکر کرو گے اتنی دفعہ ہم تمہارا ذکر کریں گے، اور ایک دفعہ درود شریف تم پڑھو گے تو ہم 10 مرتبہ رحمت بھیجیں. اتنے قدردان ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں. اور اللہ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں ظاہر ہوئی، اور 99 جو ہے ابھی باقی ہیں آخرت. صبح شام کتنی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، ہم اپنی قدر و قیمت کو پہچان لیں، اپنی قدر و قیمت کو پہچان لیں. ایک بزرگ کے پاس ایک غریب آدمی آیا، اپنی غریبی سے پریشان، بہت پریشان. اس نے مرنے کی خواہش ظاہر کی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مری جاتا تو اچھا تھا. بزرگ نے کہا کہ بھائی ٹھہرو، ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں لے لیتے ہیں، تمہیں 10,000 درہم دے دیتے، کیا تم راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، میں راضی نہیں. نے کہا اچھا چلو، تمہاری زبان نکال لیتے ہیں، تمہیں 10,000 درہم دے دیتے، اس پہ راضی ہو؟ نہیں نہیں بھائی، یہ بھی نہیں چلے گا. تو تمہارے ہاتھ پاؤں رکھ لیتے ہیں نکال کے، اور تمہیں 20,000 دیتے ہیں. بولا نہیں جی، اس پہ بھی راضی نہیں. تو نے کہا اچھا، تو تمہارے جو ہے وہ تم کو پاگل مجنو بنا دیتے ہیں، اور تمہیں جو ہے ایسا کوئی ٹیکہ لگا کے پاگل بنا دیتے ہیں، اور 10,000 اس کام کے دیتے ہیں. نے کہا میں اس پہ بھی راضی نہیں. بزرگ نے کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ 50,000 کی مالیت کا سامان تمہارے پاس ابھی ہے، ابھی گنوایا میں نے، اور پھر تم کہتے تم غریب. تو یہ جو ہے بزرگوں کے جو ہے، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ ساری زندگی جو ہے ماشاءاللہ دین پھیلانے میں گزری ہے، ان کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں. حضرت نے لکھا ہے ایک جگہ کہ صحیح یا غلط ہو اس سے بحث نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے عام طور سے یہ سمجھتا ہے کہ میں مجمع میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، اور میری عادت سب سے زیادہ اچھی ہے، دین دنیا کا جو بیلنس مجھ کو سمجھ میں آیا ہے اور کسی کو نہیں سمجھ میں آیا، تو میری عادت سب سے اچھی ہے، آدمی اپنے دل میں سمجھتا ہے. اور مجھے اپنی خوبیاں اور کمزوریاں سب سے زیادہ معلوم ہیں، دوسرا آدمی جانتا ہی نہیں کہ میں اصل میں کیا ہوں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تین چیزیں تو ہر ایک کو ایسی ملی ہوئی ہیں، تو کم سے کم اسی پہ شکر ادا کرو کہ تم کو سب سے عقل مند بنایا، تم کو سب سے زیادہ علم دیا، تم کو سب سے اچھی عادت دی. صحیح یا غلط اس سے بحث نہیں، لیکن چونکہ تم خود سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تو اسی پہ شکر کر لو کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنا دیا، اتنا دیا اخلاق میں، صورت میں، سیرت میں، گھر والوں میں، عزت میں، مرتبے میں. ہر شخص کے پاس درجنوں درجنوں ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر اسے کہا جائے کہ یہ والی دے دو تو کبھی راضی نہیں ہوگا، نہیں نہیں یہ نہیں دوں گا. تو پھر جو دو چیزیں، دو ایک چیزیں کسی اور کے پاس ہیں، ان کو دیکھ کے کیوں للچاتے ہو؟ جو اللہ نے دیا اس کو خوش رہو، الحمدللہ. تو بھائی ہر آدمی جو ہے بہت بڑا کروڑ پتی اور ارب پتی ہے، ہم اپنی قدر پہچان لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو محترم ماں اور بہنوں اور محترم بھائیوں، مجلس علم میں بیٹھنے کے فضائل، اس میں جو ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں. جو آدمی گھر سے نکلے کہ میں دین سیکھ لوں، کوئی اللہ کی بات سیکھ لوں، تو مخلوق ساری دعاؤں میں لگتی ہے اس کے لیے. فرشتے، مچھلیاں، درندے، چرندے، پرندے، کیڑے مکوڑے سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دیجیے، دین کی بات سیکھنے کو گیا ہے. اور علم دین کا ایک باب سیکھنا 1,000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. اور جو لوگ صرف دین سیکھنے کو جمع ہوئے، اور کوئی اور مقصد دینی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی سیلفش موٹیو نہیں ہے، تو ان کو جو ہے یعنی قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے، جو لوگ اللہ کے لیے ملتے ہیں اور بچھڑتے ہیں، اور نور کے ممبروں پہ ہوں گے، پلپٹس آف لائٹ، نیت کی وجہ سے، انٹینشن، تاکہ ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں. جو لوگ صرف اللہ کے لیے ملے چلے گئے اور کوئی مقصد نہیں تھا، بزنس ڈیل نہیں تھی، تو وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. اتنی بڑی فضیلت دیں گے. اور جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی نیتیں بالکل جو ہے کام تھوڑا سا 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، 5 منٹ کا، نیت جو ہے وہ آسمان پہ پہنچی ہوئی. नीयत क्या है कि भाई अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए और हमें मुस्तकिल जो है अल्लाह की यानी इताअत ऐसी मिल जाए कि कोई दलील की ज़रूरत ना पड़े कि भाई ये समझाओ, ये हुक्म, इसका फतवा कहाँ है, वो किधर है, मुझे बताओ, कन्विंस करो, अगर मुझे समझ में आए तो करूँगा, ऐसा नहीं भाई। मेरे अल्लाह का हुक्म मुझको करना। शरीयत जो है ना, इस्लाम की बातें, हम सुन्नत तरीक़े हमारी सेकंड नेचर बन जाए, बस उस पर उसी को दिल चाहता है मुझे जो अल्लाह को दिल चाहता है, ऐसा हो जाए मेरा दिल तो मुझे कोई हर वक्त अल्लाह की याद हो, गुनाह से बच जाए, नाफरमानी से बच जाए, सुन्नत तरीक़े आ गए, हयात तैयबा मिल गई, पाकीज़ा ज़िंदगी मिल गई, दुनिया में एक आसान रिस्क, ईजी लिविंग और आसान चीज़ें सीखना, और आखरत में जन्नत में बड़े बड़े दर्जात मिल जाएँ। ये हम इसलिए बैठे हैं कि भाई हम बैठेंगे, देंगे 1 ही घंटा, लेकिन चाहिए मुझको ये सारा बिलियंस की डील चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हैं मशायख यहाँ कि आदमी का दिल पलट जाए और कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, उसके लिए ये चीज़ें पढ़ते हैं। भाई कोई आदमी मरते वक्त ये पढ़ गया, काम कर गया, उसका काम हो गया, तो ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि नेकियों का शौक़ हो जाए, गुनाह से नफरत हो जाए, और हर किस्म का डिप्रेशन और ये जो चीज़ें माशरे में फैली हुई हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है, आदमी सब कुछ है लेकिन परेशान है, वो परेशानी खुशी खुशी में हंसते खेलते आदमी अल्लाह के पास पहुंचे। तो भाई इसमें जो है नियतों का सबक पहले होता है कि हर काम हम दीन कैसे बनाएं, हमारा मिलना भी, खाना भी, लॉन्ड्री भी, दफ्तर जाना भी, बाजार जाना भी अल्लाह के लिए होना चाहिए, सब मानते हैं। उसमें हम क्या सोचें, क्या नियत हो, क्या हम गौर करें, जस्ट टू रिफ्लेक्ट कि भाई अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम मुलाकात को जाते हैं, एक भाई किसी दूसरे घर के या रिश्तेदार गए, या मस्तूरात में अब एक बहनें दूसरी बहनों से मिली, तो उसमें हमारी क्या नीयत हो, मुलाकात की क्या नीयत हो, तो उसमें जो है भाई अल्लाह की रज़ा के लिए मुलाकात कर रहे हैं, ये सुन्नत अमल है, उसके लिए कर रहे हैं, और मुसलमान का दिल खुश करने की नीयत कर रहे हैं, ये भी एक इबादत है, मुसलमान का दिल खुश हो जाए, सलाम करने की नीयत, उससे हमें सवाब मिलेगा, मुसाफा करने से गुनाह माफ़ होते हैं, उसकी नीयत है, अगर कोई बीमार है तो उसकी आयादत की नीयत है, 70,000 फरिश्तों का सवाब मिलेगा, और किसी मुसलमान की जायज़ हाजत, रिश्तेदार है, कोई भाई है, किसी का कोई काम अटका हुआ है, तो हम जाके कुछ मशवरे दे देंगे, थोड़ा कोई काम कर देंगे, घर की सफाई कर देंगे, मुसलमान की जायज़ हाजत पूरी करने के लिए चलना 10 साल के इतकाफ़ का सवाब मिलता है। मुसलमान की हाजत पूरी करने के लिए चलना, सिर्फ इंटेंशन आता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं, स्किल भी नहीं, काम भी नहीं आता, करेंगे कैसे, नहीं, लेकिन चल पड़ा, किसी के यहाँ कोई कोई ज़रूरत पेश आ गई, अच्छा मैं आता हूँ, मालूम नहीं कैसे मदद करेंगे, चलने पर इतना सवाब है। मुसलमान के लिए जाके उनसे दुआ कराएंगे, कोई बुज़ुर्ग मिल गए उनकी ज़्यारत हो करेंगे, मिल कर दो आदमी अल्लाह का जिक्र करेंगे, ये सारी नीयतें, इसलिए किसी के दरवाजे पर दस्तक दी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से इसलिए मिलने को गया, और कोई अगर घर में नामहरम मौजूद हैं और वहाँ जाना पड़ा तो बदनज़ीरी से बचने की नीयत, भाई इधर उधर आँखें नहीं दौड़ाएंगे, आँखों की हिफाजत करेंगे, इसकी नीयत की। काम एक था, मुलाकात को गए, एक दर्जन नीयतें लेके उनके एक दर्जन 50 सवाब अलग से लेकर। तो मुसलमान का काम यह है कि जिस फ्रेमवर्क में, जिस डायमेंशन में वो चला जाए, उसको वो दीन बना ले किसी तरीके से, अच्छी नीयत से उसको दीन बना ले। तो ये हर हफ्ते जो है इस तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि हमें शौक़ पैदा हो जाए कि हर काम दीन बनाया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये जिक्र की अहमियत और जो है कुछ ऐसे अज़कार जो बहुत आसान हैं, जो कहीं लिख लिए जाएं डायरी में या फ़ोन में ज़बान में याद कर लिए जाएं, तो उनमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में लिखा है कि जो आदमी ये दुआ 3 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा, उसके लिए अब्दाल का दर्जा लिखा जाता है, यानी बुजुर्गान औलिया कराम में एक बहुत बड़ा दर्जा अल्लाह के यहाँ है, अब्दाल कहलाते हैं। तो जो आदमी ये दुआ 3 दफ़ा पढ़ ले रोज़ाना, तो उसको ये दर्जा मिलेगा अल्लाह के पास। اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ترجمة: يا الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم کی مغفرت فرما. اے اللہ، أمة محمد صلى الله عليه وسلم پر رحم فرما. اے اللہ، أمة محمد صلى الله عليه وسلم سے درگزر فرما. ये जो है मज़ाहिर हक, ये मिशकात शरीफ की शरह है, कमेंट्री और मिशकात शरीफ, और मिशकात शरीफ में कई हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम इस तरह की किताबों की, तो उसकी शरह है कमेंट्री, उस किताब में से ये मुसन्निफ़ का ऑथर का नोट है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि हदीस शरीफ में आया कि जो आदमी पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, उसको सारे मुसलमानों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा, 5 सेकंड में 1 बिलियन सवाब, बहुत जबरदस्त नुस्खा है। उसको अगर आदमी अगर सुन्नत नफिल नमाजों में सजदे में पढ़ लिया करे, या दिन में नमाज के आखिर में एक दिन में अगर 25 दफ़ा पढ़ ले तो मुस्तजाबु दावात हो जाएगा। अब जो दुआ करेगा अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगा। उन्होंने ऐसे ऐसे तजुर्बात जो है ना वो लिखे हैं। उसमें क्या है, वी शुड हैव ए बिग हार्ट। फर्ज किया था कि काबा शरीफ में बिल्कुल कोई करीब पहुंच जाए और दीवार के पास पहुंच जाए जहां बहुत मुश्किल होता है पहुंचना, तो क्या मालूम हुआ कि वहां पे जो लोग हैं वो यही दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह उम्मत तो बख्श दीजिए, या अल्लाह उम्मत का क्या होगा, उम्मत पर हम फरमाइए। अपने आप को भूले हुए हैं और उम्मत का जाके वहां पर रो रहे हैं। अगर कभी मौका लगे तो जाके ये आवाज़ें सुनाई। एक साहब ने कहा एक बुजुर्ग को कि मुझको रोना नहीं आता, हरम शरीफ में थे तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो तुम मुल्तजम पर चले जाओ, वहाँ बहुत सारे लोग रो रहे हैं, जब तुमको ऐसे नेक लोगों की सोबत मिलेगी जो सब रो रहे हैं तुम्हें भी आ जाएगा। वो गए उनके साथ ऐसे ही, देखा वहाँ पर तो लोग सिर्फ रो ही रहे हैं, वो उधर नहीं रोना शुरू। जिसका दिल सख्त हो वो ऐसे अहलुल्ला बुजुर्गों की मजलिस में जा बैठे जिनके जो दिल नरम अल्लाह की मोहब्बत में हो, तो वो भी वैसा ही हो जाएगा, जो जहाँ बैठेगा वैसा हो जाएगा। अल्लाह, चलते फिरते मस्जिद दफ्तर कारोबार जाते आते अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। खाने में नूर होगा, घरों में, घरों में, दीवारों में, फिर उससे जो बच्चे माशाल्लाह बड़े होंगे तो उनके हर जो है ना रग रग में नूर होगा, और जो खाने में नूर होगा और दूसरे मशगलों से दिल घबराएगा, फजूल की सारी बातें छूट जाएंगी। अरे मेरी सारी तस्बीह छूट गई, मेरे 5 बिलियन का सवाब सुबह रह गया, 5 लाख का सवाब शाम को रह गया, ये कौन आ गया, और मैं जो इसमें मुश्किल हो गई। आदमी हिसाब लगाएगा आखिर में कि मुझे कल तो मैंने 5 बिलियन कमाए थे, आज जो है बहुत कम। जैसे कि बाज आदमी होते हैं किसी की मिसवाक गुम हो जाए तो अफसोस से रोने लगते हैं कि आज मेरा 70 गुना सवाब रह गया, 70 गुना सवाब रह गया, नमाज वो पढ़नी थी पढ़ी लेकिन मिसवाक रह गई। तो जब आखिरत की तिजारत हमारे दिमाग में रोशन हो जाएगी ना, तो इन चीज़ों में जो मतलूब हैं, असल हैं, जो बहुत आसान हैं, प्राइमरी के सबक हैं, उनमें ना कोई बड़ी डिग्री चाहिए, ना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाने की ज़रूरत है, ना बहुत बड़ी बड़ी अरबी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। जो असल, जो आसान, जो सी चीज़ें हैं बस वो हमारी सेकंड नेचर बन जाएंगी, और जब वो छूटेंगी तो दिल घबराएगा। तो समझिए कि इस आदमी को हिदायत मिलने वाली मिल रही है और बहुत फ़ायदा हो रहा है इसका। एक दरूद शरीफ है, उसके बहुत फ़ज़ाइल हैं, ये मुख्तसर हिजबुल आज़म में से है, माशाल्लाह इसमें से लिया गया है। अल्लामा इब्नुल मुश्तहर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आदमी ये चाहता हो कि अल्लाह ताला की ऐसी हम्द करे, ऐसी तारीफ बयान करे जो सबसे अफजल हो, जो उसकी मखलूक में से किसी ने की हो, अव्वलीन आखरीन मलाइका मुकर्रबीन आसमान वालों ज़मीन वालों से भी अफजल हो, इस तरह ये चाहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा दरूद पढ़े जो उन सब से अफजल हो जितने दरूद किसी ने पढ़े, इस तरह ये चाहता हो कि अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ मांगे जो उन सब से अफजल हो जो किसी ने मांगी हो, तो वो ये पढ़ा कर। ये उसका प्रीफेस है, बुजुर्ग फरमाते हैं इसको, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसर हिजबुल आज़म में उनके शागिर्द ने लिखा है। तो अब हम लोग वो पढ़ेंगे, 3 लाइनों का, 4 लाइनों का दरूद शरीफ। اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة। इसके तर्जुमा बहुत आसान है कि अल्लाह आपकी तारीफ है जो आपकी शान के मुनासिब है, बस आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए जो आपकी शान के मुनासिब है। हम तो नहीं जानते, आपकी शान के मुनासिब जितना बड़ा जो होगा एजाज़ व इकराम वो भेजिए आप, हम उसकी दुआ करते हैं। और हमारे साथ भी वो मामला फरमाइए जो आपके शायन शान है बादशाह के दरबार में, हमें भी इतना दीजिए जो आपके शायन शान, बेशक तू ही आप ही उसका मुस्तहिक हैं कि आपसे डरा जाए और आप ही मग़फ़रत करने वाले। बादशाह जब खुश हो जाते थे, पहले ज़माने से वो कायदा है, तो कोई छोटी सी चीज़ भी कोई लाया तो बराबर में सोना तौल के देते थे कि इसको दे दो इतना गोल्ड। बादशाह तो अल्लाह के दरबार में अगर अल्लाह से किसी की डील हो जाए तो कितना मिलेगा उसको। तो ये दरूद शरीफ जो है, अगर हम पूरी पूरी मंजिल और चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं तो लिख लें मोटे मोटे ये 4-5 मामूल में शामिल करूँ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्ली वसल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फइन्नका अहलु तक्वा व अहलुल मग़फिरा। इसको दुआ के शुरू में और आखिर में भी पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ का सवाब भी मिलेगा, दुआ का भी सवाब मिलेगा। भाई अज़कार में, दरूद शरीफ में ऐसे ऐसे मोती छुपे हुए हैं कि आदमी जो है कोई यानी ये नहीं कह सकता कि मुझे को वक्त नहीं मिलता या मैं कहाँ जाऊँ कि मुझे दीन का बहुत सवाब मिले। बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुर्सी में बैठे हुए, बिस्तर में लेटे हुए। एक बुज़ुर्ग का वाकया पढ़ा था चंद महीने पहले कि वो बिस्तर बीमारी में 1 साल बिस्तर में लेटे लेटे पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। बड़ी उम्र, हज़रत तशरीफ़ लाए, हज़रत यहाँ पर नहीं तशरीफ़ ला सके, उनके सुबह फ्लाइट है, हज़रत को जाना था, 68 साल की उम्र में आलिम का कोर्स किया, 68 साल की उम्र में आलिम बने और 48 साल से इस मुल्क में दावत का काम कर रहे। हम लोग पैदा भी नहीं हुए तो जिस ज़माने में फरमाते हैं कि न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में सिर्फ 15-18 मुसलमान फैमिलियां होती थी, कि आप कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। तो यानी हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम कितने ही मशगूल हैं, इन्होंने 60s में पढ़ना शुरू किया, उन्होंने देखा कि इल्म की फजीलत है, ज़रूरी है। एक बुज़ुर्ग ने उनको फरमाया कि भाई बाहर से कहाँ तक आएंगे, यहाँ जो अंग्रेजी दान हो, तुम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो और तुम ये हो, तो तुम लोग क्यों नहीं इल्म दीन पढ़ते। तो उनको साथ समझ में आ गई, उन्होंने कहा मैं पढ़ता हूँ, आलिम हो गया 68 साल की उम्र। तो मोटिवेशन से जिंदा जो है ना मिसाल आपके सामने, अल्लाह ताला काम लेते। दरूद शरीफ की कसरत, दोनों जहानों में कामयाबी के लिए कसरत से दरूद शरीफ पढ़िए। आखरत में शिफात, दुनिया में मईशत की तंगी दूर होना, माल में बरकत, दुश्मनों पर गलबा, दिलों में मोहब्बत पैदा होने का जरिया है। मैं नीचे नोट में लिखते हैं, हासिदों मक्कारों से गैबी तौर पे हिफाजत होती है। दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। जैसे फरमा रहे थे, गुस्से पे भी काबू होगा, 10 रहमतें भी मिलेंगी और हुजूर सासों की शिफात भी मिलेगी, रिस्क भी मिलेगा, माल भी मिलेगा, मोहब्बत भी मिलेगी। जो आदमी दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ता है वो मदीना शरीफ की तरफ खींच लिया जाएगा, बार बार हज उमरे पे जाएगा, बार बार देखा कहाँ है भाई हरम शरीफ में बैठा। तो ये बरकतें हैं उसकी, और एक बरकत ये है कि दूसरे लोग उसकी गीबत नहीं कर सकेंगे, अल्लाह उनकी ज़बान बंद कर देगा। दरूद शरीफ पढ़ते तो उसके जो है ना तस्बीहात दरूद शरीफ की हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। एक हमारे बुजुर्ग हैं, देखें भाई इसमें जितनी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो वो सिलसिले के मशायख जिन्होंने पूरी मेहनत करके अपने उसातिज़ा से लिखा और जिसने छापा और जिसने प्रिंट किया और जहाँ से आया, तो अल्लाह ताला उन सबको सवाब दे दे। हमारा काम सिर्फ तारुफ का है, बैठ के सड़क पे इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा है। तो ये जो है, हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र रूहानी गजा है, बातिन की गजा है। जब अल्लाह किसी को ये नसीब फरमा दें तो आदमी जो है मजबूत पायदार होता है। आम तौर पे इंसान दो तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, एक गुनाहों से पाक ज़िंदगी, एक गुनाहों में डूबी हुई ज़िंदगी। दोनों तरह की ज़िंदगी गुजारने वाले एक ही सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, एक ही बाज़ार में तिजारत कर रहे हैं, एक ही अंदाज में माल कमा रहे हैं। एक जो है वो गुनाहों से महफूज है, दूसरा गुनाहों में फंस गया है। तो अब फरमाते हैं कि मेरे अजीज़ों, उस फ़र्क की वजह यह है कि एक को अल्लाह ने अपनी याद अता फरमाई है और दूसरा उससे महरूम है, ये फ़र्क है। बाज़ औक़ात जो है हमें फ़िक्र होती है कि मजलिस में शरीक हुए, सोच पैदा हुई कि अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे, जैसे ही बाहर की ज़िंदगी में पहुँचे सारी मोटिवेशन ख़त्म, हिम्मत ख़त्म और इरादे कमज़ोर हो गए। उसकी वजह ये है, फरमाते हैं कि अंदरूनी क़ुव्वत मौजूद नहीं, क्योंकि वो ज़िक्र नहीं किया हमने। हज़रत फरमाते, ज़िक्र कर लो, हथियार ले लो, ये मुसलमान का यानी शैतान से हिफाजत का ज़रिया है। अल्लाह ने जो है ईमान वालों से फरमाया कि ईमान वालों, अल्लाह को खूब कसरत से याद किया करो। इसको सुनने के बाद कोई ताजिर ये नहीं कह सकता कि मैं जिक्र नहीं कर सकता, जिक्र करने वाले तो नेक लोग होते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने यहाँ जिक्र करने के लिए नेकी की शर्त नहीं लगाई। कोई मर्द ये नहीं कह सकता कि भाई खवातीन के पास ज़्यादा वक्त होता है इसलिए वो जिक्र करें, मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ। यहाँ पे खवातीन को भी और मर्दों को अलग अलग नहीं बताया, बताया कि ईमान वालों खूब अल्लाह को याद करो, और उनको अल्लाह ने अकलमंद बताया कि अकलमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को बैठे खड़े लेटे याद करते। अल्लाह ताला हमें जो है ना जिक्र की तौफीक अता फरमाए। जिक्र में ये जो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, कुरान की आयतें, रब्बना आतिना, यानी तो दिन भर दुआ ही मांगा करे, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मोहताज हूँ, मुझे दे दीजिए। दिन भर मांग रहा है, अल्लाह मकान दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, अच्छी रोज़ी दे दीजिए, फरिश्ते लिख रहे हैं ये इबादत कर रहा है, ये भी जिक्र में। दुआ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, दुनिया की चीज़ें मांगो, अल्लाह जूते दे दे, चप्पल दे, यानी आदमी का ये है कि बड़ी बड़ी चीज़ें मांगना चाहिए उसको, जन्नत फिरदौस आखिरत की, लेकिन कोई चीज़ नहीं है छोटी मोटी उसको भी अल्लाह से ही मांगे, जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगे, जन्नतुल फिरदौस भी अल्लाह से मांगे। अल्लाह किसी को सोने का पहाड़ दे दें या उसको यानी नमक की एक डली दे दें, अल्लाह के यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह के यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे मटेरियल मेजरमेंट जो हैं वो हमारे हैं और हम लोगों ने पाबंदियाँ लगा रखी हैं कि अल्लाह के यहाँ जो है जो मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। तो इसलिए कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बहुत मिलेगा और इतना देंगे इतना देंगे। और अभी किसी मसलहत से अगर नहीं दे रहे तो उसी में हमारा ही फ़ायदा है। अल्लाह को मालूम है कि इसको अगर देंगे ज़्यादा तो ये नाफरमान हो जाएगा, फिर मुझको इसको गलत जगह उसको जो है इसकी यानी सज़ा देनी पड़ेगी, इसलिए कम देते। ये नहीं कि अल्लाह के यहाँ कमी है देने में, हमारे लिए मसलियत अभी यही है कि हमको उतना ही दें जितना मिल रहा है, लेकिन अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह हम मोहताज हैं, हम कमज़ोर हैं, हमें और दीजिए, हमें जो है यानी मज़ीद शुक्र की तौफीक दीजिए और हमें जो है दुनिया आखरत की सारी भलाइयाँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह देंगे और बहुत ज़्यादा देंगे। सीरत पाक का एक सबक हम लोग पढ़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ताकि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें आ जाएं। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी काफिरों में भी इस कदर मशहूर थी कि सादिक और अमीन आपका लक़ब था। हिजरत के वक्त काफिर आपको कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे, लेकिन वही लोग इस खूनी दुश्मनी के बावजूद अपनी अमानतें आप ही के पास रखते थे। आपने ऐसा कोई देखा? अपनी अमानतें वो कहीं किसी और से ट्रस्ट नहीं था, लाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखते, और जो है उनसे उनकी दावत से इख्तलाफ था तो मंसूबे बनाते किस तरह इनसे छुटकारा हो। तो जो है ये ऐसा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सखी इतने जेनरस थे, गोया रग रग में सखावत भरी हुई थी, कभी जो है ऐसा नहीं हुआ कि जबान से नो निकल जाए। क्या मजाल के जो है कुछ बाल बच्चों की भूख प्यास सखावत में रुकावट पैदा कर देते। आपके दरबार से मुसलमान काफिर इंसान हैवान जानवर बराबर जो है आपके दरबार से हासिल करते। ऐसा भी हुआ कि जब कोई दिरहम दीनार रहा और कोई मुस्तहिक ना मिला, यानी घर में पैसे मौजूद हैं आज कोई मांगने वाला नहीं आया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ न ले गए, इंतज़ार में रह के पहले वो तकसीम हो जाए फिर घर जाऊंगा। ऐसा भी हुआ। तवाज़ो और आजिज़ी के पैकर थे हातिम ताई के बेटे आदि, सिर्फ तवाज़ो यानी हम्बलनेस को देखकर आपकी सच्चाई के कायल हो गए। यहूद के बहुत बड़े आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम ने बेतकल्लुफी और सादगी देखकर इस्लाम में ले आए और फरमाने लगे कि ये चेहरा झूठा नहीं है। तमाम तर आजमत और बुजुर्गी के बावजूद हया और शर्म कंवारी लड़कियों से भी ज्यादा थी, इतनी शर्म फरमाते थे। इफ्फत और पाकदामनी जिंदगी का जुजू था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान पाक था, मतलब यह है कि कुरान पाक यानी अल्लाह के अहकाम और उसकी रजा के अमली नमूना, लड़ाई हो सुलह हो दुश्मनी दोस्ती आराम इबादत खुराक लिबास उठना बैठना सोना जागना, हर मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही अमल होता है जो अल्लाह की मर्जी होती है, जो अल्लाह की मर्जी होती है। लोग बरसों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, कहते हैं कि आप कभी अपनी वजह से नाराज़ नहीं होते, कभी अपने नुकसान का बदला नहीं लेते, हाँ अगर शरीयत का कोई हक ज़ाया होता तो फिर गुस्सा फरमाते, उस वक्त किसी की सिफारिश नहीं बचा सकती। सोने के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती मगर दिल अल्लाह की याद में जागता रहता, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है। फरिश्ते आए उन्हें हदीस है उसकी, जो ये सो रहे हैं लेकिन इनका दिल जाग रहा है, लंबी उसकी रवायत है। एक एक मजलिस में 70 और 100 मरतबा इस्तिगफार सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे फिर भी हमारी तालीम के वास्ते और अपनी दरजात में अल्लाह जो उनको तरक्की अता फरमाते थे 100-100 मरतबा इस्तिगफार फरमाते, एक मजलिस में बैठे बैठे उससे वो सारे कलमात हम तक पहुँचे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूब इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूब इलैह, और आयतों में रब्बी इग़फिर वरहम व अंता ख़ैरुर राहिमीन। तो इस्तिगफार आदमी का तकिया कलाम होना चाहिए, आते जाते अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, दो मुसलमान मिले एक दूसरे के लिए मग़फ़िरत मांगी, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए, जितना ही नहीं जितना खुला हुआ दिल होगा और दूसरे के लिए जितनी दुआ करेंगे पीठ पीछे भी मिलकर भी, तो उससे एक माहौल बनेगा और उससे जो अल्लाह की रहमतें आएंगी, अच्छी अच्छी पाकीज़ा बातें जो करनी चाहिए। सुन्नत का एक सबक हम लोग पढ़ेंगे कि बीमारी और आयादत की सुन्नतें। कोई आदमी बीमार हो गया अगर उसके पास हम गए तो हमें कैसा अमल करना चाहिए कि हमें सवाब मिले सुन्नतें मिले। बीमारी में इलाज कराना सुन्नत है, इलाज कराना यानी मेडिसिन इस्तेमाल करना सुन्नत है, इलाज कराता रहे मगर बीमारी की शिफा में अल्लाह पर नज़र रखे। शिफा अल्लाह देंगे, मेरे जिम्मे काम है कि हम इलाज कराएं। कलौंजी और शहद के साथ इलाज करना सुन्नत है, शहद हनी और ब्लैक सीड ऑयल, उसमें बहुत से फजा उसके फजाइल हैं उसकी चीज़ें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने इन दोनों चीज़ों में शिफा रखी है, दोनों की तारीफ में बहुत सी हदीसें आई हैं। इलाज के दौरान नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। दीन जो है उसमें कोई अलग आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इन चीजों को सुन्नत समझ के करे आदमी तो वो उसकी दुनिया भी दीन बन जाएगी। बीमार भाई की आयादत के लिए जाना सुन्नत है। जाबिर रदी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं बीमार हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आयादत के लिए तशरीफ लाए। अभी मुख्तलिफ हदीसें हैं, उन्होंने उसमें रवायतें लिखी हैं कि ये बुखारी शरीफ की है और ये जो है अब नोवी शरीफ की है, शरह मुस्लिम की है। तो यहाँ पर चूंकि हल्का है जिसमें लोग समझते हैं कि ट्रस्ट वर्दी सोर्स है, तो हम लोग वो बातें जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। किसी को अगर उसमें कोई इश्काल हो गई कहाँ है, तो बड़ी बड़ी किताबें, लाइफ टाइम रिसर्च मौजूद है, मस्जिदों में उसके प्रोग्राम होते रहते हैं। बीमार पुरसी करके जल्दी लौट आना सुन्नत है, कहीं आपके ज़्यादा बैठने से बीमार जो है वो रंजीदा परेशान ना हो जाए, या घर में जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनके काम में खलल ना पड़े। सलाम दुआ की, दुआ के आई, उससे हाल चाल पूछा, जल्दी वापस आना चाहिए। ये मिशकात शरीफ में है। बीमार की हर तरह तसल्ली करना सुन्नत है। मसलन उनसे ये कहे कि इंशाअल्लाह आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं। कोई डर या खौफ पैदा करने वाली बात बीमार से ना कहे, कैसा ऐसा हो गया और इस बीमारी में तो कुछ बचता नहीं, और इस किस्म की फजूलियात। यहाँ बाज़ दफ़ा वो रिसर्च रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं, बाज़ बीमार गए तो खुद दिखा रहे हैं मेरे फलां फलां वजू में ऐसा है, और दुनिया में बस चंद ही लोगों को ऐसा होता है, और बस मैं तो अब चंद लम्हों का मेहमान हूँ। पूरी रिसर्च लेके आदमी के हाथ में रख देते। कहना चाहिए भाई अल्लाह कादिर है, अल्लाह इस पर भी शिफा दे देंगे, पूरी उम्मीद रखो और तुम्हारी दुआ कबूल होती है। बीमार की दुआ फरिश्तों की तरह कबूल होती है। किसी की आयादत करे तो उससे कहे ला बासन फहूरन इंशा अल्लाह, ला बासा फहूरन इंशा अल्लाह, कोई हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह बीमारी गुनाहों से पाक करने वाली, तसल्ली दें। उसके बाद उसकी शिफायाबी के लिए 7 दफ़ा ये दुआ पढ़ें। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह, तो वो जहाँ पर हैं साउथ अफ्रीका से, उनको दूसरी मुल्क से कहीं फ़ोन आया कि सर मैं बीमार हूँ, उन्होंने कहा अच्छा फ़ोन पे तुम लाओ सुनो ये दुआ पढ़कर, वो फ़ोन में फूका उन्होंने उसको, यानी वो शेख थे उस्ताद, तो तसल्ली के लिए अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, ये 7 मरतबा पढ़ना चाहिए। कोई बुजुर्ग है, कोई वह कोई महरम है, यानी पेशानी पे हाथ रखकर पढ़ सकते हैं, अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ जो अजीम है, अर्श अजीम का रब है, कि आपको शिफा अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये भी मिशकात शरीफ से है, कि 7 मरतबा इसको पढ़ने से मरीज को शिफा हासिल होगी। 7 मरतबा आयात शिफा भी हैं कुरान शरीफ में, आयात हैं वो पढ़कर, और ये जो है यानी ये तो सुन्नत से साबित है। मरीज के पास जाओ, तसल्ली दो, अच्छी बात करो, ये दुआ पढ़ो, और जो है जल्दी रुखसत। अल्लाह ताला जो है ना हमें सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उससे सिला रहमी भी होगी, रिश्तेदारों में मोहब्बत भी बढ़ेगी, और हमें जो है आपस में इकराम नसीब होगा। तो बीमार की आदत करना चाहिए, 70,000 फरिश्ते दुआ करेंगे और आप जन्नत के बाग में होंगे ढूंढ ढूंढ के भाई कहाँ है बीमार। हत्ता कि आया आदि शरीफ में, अल्लाह ताला बंदे को बुला के पूछेंगे मैं बीमार था तुम क्यों नहीं आए, तो वो कहेगा या अल्लाह आप कैसे बीमार हो सकते हैं, बोले मेरा फला बंदा बीमार था, तुम अगर वहाँ जाते तो मुझको भी वहीं पाते। इस तरह के मजा नहीं, बीमार की आदत करनी चाहिए। अच्छा भाई, ये जो है आशिक इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है किताब लिखी है, इसमें हुकूक है। सिला रहमी के बाद अब ये किताब पढ़ी जाएगी, इसका नाम ही है इकरामुल मुस्लिमीन, इसमें सबके हुकूक पढ़े जाएंगे। तो वालदैन के हुकूक सबसे पहले हैं, तो पहला बाब जो है उस पर ही है। वालदैन को राहत पहुँचाना उनके एज़ाज़ व अकराम की कुरान हकीम में और अहादीस में बहुत ताकीद आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रिदा वालिद की रज़ा में है, और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। मिशकात शरीफ की हदीस फरमाया कि सारे गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है माफ़ कर देता है, सवाए वालदैन के सताने के कि उसकी सज़ा मरने से पहले जल्द दुनिया में दे देता है। ये भी मिशकात शरीफ की। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा का बयान है, फरमान है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अपने वालदैन की तरफ एक मरतबा रहमत की नज़र से देखे, अल्लाह उसके लिए हर नज़र के बदले एक मकबूल हज लिख देगा, एक मकबूल हज। सहाबा ने अर्ज़ किया, अगर कोई 100 मरतबा देखे तब भी यही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इसमें इश्काल ही क्या है, क्या डाउट है, अल्लाह बहुत बड़ा है, हर आयब से पाक है। 100 मरतबा देखा, 100 नफिल हज का सवाब एक दिन में लेगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में सबसे अच्छा दरवाज़ा है, अब तुझको इख्तियार है कि दरवाजे की हिफाजत करे या उसको ज़ाया कर दे। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक आदमी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद पर वालदैन का क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोनों तेरे लिए जन्नत और दोजख, यानी उनको सताकर नाफरमानी करके जहन्नम में चला जा या उनको खुश करके जन्नत में चला जा। बहुत बड़ा दर्जा है, ताकि गैर मुस्लिम को दावा देने का ये पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और वालदैन की इताअत करो, साइड बाय साइड यानी आयात के तर्जुमे में आपको मिलेगा कि ये हुक्म दिया गया। बहुत जो है वालदैन के हुकूक हैं, अल्लाह ताला हमें जो है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो है फजाइल पढ़े जाते हैं कि भाई घर में हमारे बहनों के क्या फजाइल हैं, बातें पढ़ जाएंगे कि भाई बच्चों के जो है तरबियत के उनसे क्या मिलेगा। तो जितने हमारे लोग हैं घर में रिश्तेदार, असल में वो ख़जाना हैं और हीरे हैं, कि वो जो है कहते हैं चंद चीज़ें आदमी को जो है ज़िंदगी में बस एक बार मिलती हैं, उसमें एक चीज़ है पेरेंट्स। पेरेंट्स चले गए, आप कहाँ से लाओगे, एक एक बार वन टाइम, तो उनकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह, अब जो है ये एक किताब पढ़ी जाएगी, उसमें जो है फजाइल उन्निसा, खवातीन यानी बना अल्लाह ने जो है जो जिनको बनाया तो उनको क्या फजाइल हैं, ताकि हम घरों में अपने अपने घर वालों की कदर करें और जो है वो फजाइल सुन के शौक पैदा हो, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़े, अपने शौहर को भी जगा दे, बस अगर उसने इनकार किया नहीं उठा तो उसके चेहरे पर पानी छिड़के थोड़ा, यानी आपस में अगर ऐसी बेतकल्लुफी है कि नाराज़ नहीं होंगे तो थोड़ा पानी से छिड़काव करके उठाए कि उठिए तहज्जुद पढ़िए, यानी इतनी इबादत गुजार हैं कि खुद भी उठती हैं वक्त से पहले तहज्जुद पढ़ती हैं और घर वालों को भी उठाती हैं कि आप भी पढ़िए, उनको कोशिश करके उठाते। हज़रत असमा रदी अल्लाह अन्हा अंसारी सहाबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं मुसलमान औरतों की तरफ से बतौर कासिद यानी एम्बेसडर के उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपके पास आई हूँ, बेशक आपको अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजा, इसलिए हम औरतों की जमात आप पर ईमान लाई और अल्लाह पर ईमान लाई, लेकिन हम मकानों में घिरी रहती हैं, पर्दों में बंद रहती हैं, मर्दों के घरों में रहती हैं और जो है ख्वाहिशात हमसे पूरी की जाती हैं, हम जो है उनकी औलादों की तरबियत करते हैं, उनको उठाए रखते हैं, इन सब बातों के बावजूद मर्द बहुत से सवाब में हमसे बड़े रहते हैं, जुमे में शरीक होते हैं, जमात की नमाज में जाते हैं, बीमारों की आदत करते हैं, जनाजे में जाते हैं, जब वो हज उम्र या जिहाद के जाते हैं तो हम औरतें उनके मालों की हिफाजत करती हैं, औलाद की हिफाजत करती हैं, उनके लिए कपड़ा बनाती हैं, उनके औलाद को पालती हैं, क्या हम सवाब में उनके शरीक नहीं हैं। मर्द जो इतने बड़े बड़े काम करते हैं, दावा कर रहे हैं, मस्जिद में चले गए, पूरे दिन के लिए गायब हो गए, शाम को आए, तो हमने घर में सारी हिफाजत की और उनके लिए खिदमत की तो हमें कुछ सवाब मिला कि नहीं मिला, इतना इम्पोर्टेंट सवाल उन्होंने आकर किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर सहाबा की तरफ मुतवज्जह हुए और इरशाद फरमाया कि तुमने दीन के बारे में इन खातून से बेहतर सवाल करने वाली कोई और सुनी। सहाबा ने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको ख्याल भी ना था कि कोई खातून ऐसा सवाल कर सकती है, इतना अकलमंद सवाल, जिसमें यानी दीन का पूरा एक बाब खुल गया रिवॉर्ड्स का, इसमें जो है चैप्टर ऑफ रिवॉर्ड्स खुल गए सवाल के जवाब में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि गौर से सुन लो, समझ लो, जिन खवातीन ने आपको भेजा है उनको बता दो कि औरत का अपने शौहर के साथ अच्छा बर्ताव करना और उसकी खुशी को ढूंढना और उस पर अमल करना इन उसके सब अच्छे आमाल और कारनामों के सवाब के बराबर है। इन्होंने घर का टेक केयर किया और मर्दों ने बाहर जाके बड़े बड़े काम किए और बहुत दावा किया और जो है मिलियन मिलियन के सदकात किए और कहाँ कहाँ गए अल्लाह का दीन फैला के आए, और घर वालों ने सिंपल सिंपल छोटे छोटे अमाल करके उनको खुश कर दिया और टेक केयर किया चीज़ों का, तो उनको सारा सवाब मिल गया जो बाहर में मर्द करके आ रहे हैं। इससे क्या हमें सीखने को मिला कि खवातीन जो है हमारी बहनें हैं, घर में जिक्र अस्कार की, नमाज रोज़ा तिलावत की, उसका सवाब तो उनका अलग रहा, और मर्दों ने बाहर जाके जितना नेक काम करके आएंगे उनका सवाब उनको अलग से और मिलेगा, तो उनके लिए डबल है ये, और जन्नत में भी जो है वो नेक बहनें वो मर्दों से पहले भेजी जाएंगी। तो इतना जो है ना फजाइल है, इतने फजाइल हैं कि यानी जितना मर्द कभी गए तो भाई मेरे हिस्से का भी सवाब है, मुझको भी मिल रहा है, तो उसमें शौक से जो है तलब होगी, शौक पैदा होगा। अल्लाह ताला जो हमें शौक की जो है कदर अता फरमाए, हमारे घरों में जो हीरे मोती जवाहरात हैं अल्लाह ने अता फरमाए हैं, उनकी कदर करने की तौफीक अता। अल्लाह, ये एक मज़मून है हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब का। ये एक सफ़ा है जिसमें माँ की मोहब्बत के बारे में हज़रत ने इरशाद फरमाया है। तो फरमाते हैं कि माँ जो आपको पालती हैं, आपके जब बच्चे थे, गंदगी साफ़ करती हैं, रातों को सर्दियों में बिस्तर पर खुश्क जगह पे बच्चे को सुलाती है, और जो जगह बच्चे से गीली हो जाती है, बच्चा ऐसा कोई कर दे बिस्तर में तो गीला हो गया वो, तो वो गीली जगह पर खुद आराम कर लिया उन्होंने, बच्चे को खुश्क जगह पे सुना है, बच्चा बीमार ना हो जाए, इतनी मोहब्बत होती है। बच्चे को दस्त आ रहे हों, बच्चे को मोशंस आ रहे हों, तो 10 दफ़ा रात को उठकर अपनी नींद कुर्बान करती। हर माँ में ऐसी अल्लाह ने रहमत अता फरमाई। ज़रा बुखार आ गया तो सर्दी में कांपते हुए डॉक्टर के पास ले जाते, खुद सर्दी में कांप रहे हैं, बच्चे को खूब लपेट करके लेकर जाते। तो माँ की इस कदर मोहब्बत, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ही माओं को मोहब्बत करना सिखाया है, और माँ की मोहब्बत मेरी मोहब्बत की एक छोटी सी झलक है, छोटी सी झलक है। तो अंदाज़ा लगा लो कि मेरी मोहब्बत का सूरज कैसा होगा। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गोया बज़बान हाल फरमा रहे हैं बुज़ुर्गों के उसमें कि मेरी मोहब्बत कितनी ज़्यादा होगी। फरमा रहे हैं कि अरे अम्मा अब्बा से ज़्यादा रब्बा को याद करो। ये है जुमला तश्कील का कि अरे अम्मा अब्बा से ज़्यादा रब्बा को याद करो, क्योंकि माओं के दिल में मोहब्बत अल्लाह ने ही तो रखी है। अल्लाह की रहमत की और मोहब्बत की कितनी शान होगी। तो हम जो है अपने घर वालों की, वालदेन की, घर वालों की जो इज्जत करें, उनकी खिदमत करें अल्लाह के वास्ते, और नज़र अल्लाह पे रखें, सारे हुकूक़ अदा करें हर एक के, अपने सारे हुकूक छोड़ दें, तब काम बनेगा। दोनों बराबर बराबर हैं तो हर वक्त लड़ाई झगड़ा चीज़ें, फिर वो बड़ी उसमें मुश्किल होती है। दूसरे के सारे हक़ दे दिए अल्लाह के लिए, और अल्लाह से उम्मीद रखी कि अल्लाह मुझे दे देगा, या तो इस दुनिया में देगा या अगली दुनिया में देगा, लेकिन देगा बहुत। फिर सारा ख़ानदान आपसे दुआ कराने आएगा, ये अल्लाह का वली है, ये बहुत नेक आदमी, इससे दुआ करो। और वही जो है वो घर वाले भी, दूसरे भी, सब आके आपसे दुआ कराएंगे बाद में, जब भी कोई मुश्किल होगी कहेंगे ये बहुत नेक आदमी। तो अल्लाह के वास्ते जो है सबको माफ़ करके सबके हुकूक़ अदा करने चाहिए। एक सबक है, देखो भाई इतनी मुख्तसर ये ज़िंदगी है, आप सबको याद होगा कि अभी थोड़े दिन पहले तरावी में रात रात तक भर खड़े थे, 12 बजे रात तक, 4 महीने 4.5 महीने के बाद फिर रमज़ान आ रहा है, ऐसे सर्कुलेट होता है फ़ौरन, पता भी नहीं चलेगा, अभी फ़ौरन रमज़ान आ जाएगा। हम अपने अकाबरीन की किताब में से ही पढ़ते हैं कि भाई उनके रमज़ान में क्या उनका वलवला शौक़ होता था, ताकि जिसकी छुट्टियां हैं, जिसको हो सके तो रमज़ान का अभी से कैलेंडर बना ले कि भाई मुझको कैसे रमज़ान इस्तेमाल करना है, आके चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके ख़ानदान और उनके जो है ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी कुछ चीज़ें जो है ना अकाबिर के फ़ज़ाइल रमज़ान में से 1-2 सफ़े पढ़े जाते हैं, ताकि जो है हमें शौक़ पैदा हो जाए, दीन का शौक़ पैदा हो जाए, कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब मोहम्मद यहिया साहब, उनके यहाँ कुरान पढ़ने का, हिफ्स पढ़ने का इतना ज़ोर था कि अपने कुतुबखाना, बुक स्टोर था उनका, किताबों के पैकेट बनाया करते, दिन में बिजनेस है उनका, किताबें जमा कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, डब्बे बनाए जा रहे हैं, किताबों के पैकेट वगैरह अपने हाथ से बनाया करते थे, खुद ही उन पे एड्रेस पते लिखते थे, और उस वक्त ज़ोर ज़ोर आवाज़ से कुरान पाक पढ़ते रहते थे दिन भर। ये उनका बिजनेस में ये काम है, किताबों के डब्बे बन रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, और कहीं कोई मुतशाबा ना लगता था, कोई एक हरफ भी नहीं छूटता था, किसी को करेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी। अब उसके आगे सुनिए, एक मर्तबा मेरी दरख्वास्त पर, यानी जो मुसन्निफ हैं लिखते हैं ऑथर, के रमज़ान में कुरान शरीफ सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए तो मैंने देखा दिन भर में चलते फिरते पूरा कुरान ख़त्म कर लेते, इफ्तार का वक्त होता तो ज़बान पर कुल आउज़ु बिरब्बिन नास होती। ये अभी का वाकया नहीं, इंडिया का बहुत पुराना, सेंचुरीज ओल्ड नहीं, एक आध सेंचुरी पहले की बात हो रही। रेल से उतरे तो ईशा का वक्त हो गया था, हमेशा बावजू रहते थे, रेल से उतरे मस्जिद में आ गए, मसल्ले पर आ गए, 3 घंटे में 10 पारे ऐसे साफ पढ़े, न कहीं अटकते न कहीं मुतशाबा। रेल पे भी जा रहे थे, वजू में थे, मस्जिद आ गए, 10 पारे पढ़ ली, यानी सुना है बाकायदा इमामत के साथ, गोया कुरान शरीफ सामने रखा है और इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। 3 दिन में कुरान ख़त्म करके वापस रवाना हो गए, ना सामे की ज़रूरत, ना कोई करेक्ट करने की, ना कोई प्रैक्टिस की। फरमाया कि मीरठ के लोगों को मालूम हुआ कि एक आदमी सहारनपुर से 3 दिन में कुरान शरीफ सुनाने आता है, तो 30-40 हाफिज़ इम्तहान लेने के लिए तरावी पढ़ने आएगी, देखें कैसा पढ़ते, और कहीं गलती की तो हम बताएंगे। तो जो है वो 3 दिन में ख़त्म करके चले गए। अब उसमें सुने कि वो एक अजीजी एक मौलवी नसीरुद्दीन साहब थे, उनकी मस्जिद में एक दफ़ा कुरान सुना रहे थे एक हाफिज़ साहब। तो इनके शेख यहिया साहब जो है किसी सफ़र से वापस आए, कहीं से ट्रेवल से वापस आए, तो वहाँ तशरीफ़ ले गए तो नसीरुद्दीन का 14वां पारा चल रहा था, 13वीं रात होगी 14वीं रात होगी, उनका हाफिज़ जी का 14वां पारा चल रहा था। बार बार अटक रहे थे, इन लुक्मे की ज़रूरत पेश रही थी, कहीं कहीं अटक जाते थे। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सबको कुरान अच्छा सा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ तरगीब के तौर पर आई, सबका मुकाम बहुत ऊँचा है। हज़रत बावजू थे, मस्जिद तशरीफ़ ले गए और जो हाफिज़ थे नसीरुद्दीन उनको सलाम फेरने के बाद मसल्ले से हटाया, यानी 14वां पारा वो पढ़ रहे थे 14th जुज़, तो मसल्ले से हटाकर 16 रिकात बाकी थी, उसमें बकिया 16 पारे ख़त्म कर दिए, कुरान हरीफ ख़त्म करके वहाँ से। तो मसल्लियों को गिरानी ज़रूर हुई लेकिन लोगों को जल्द कुरान ख़त्म होने की खुशी हुई, और 12वीं रात में कुरान ख़त्म करके सब थकन भूल गए। तो ऐसे जो है ना मशायख के उनके यहाँ जो है, फिर वो रात में जो है अपने घर में मस्तूरात को कुरान सुनाया करते थे रात में, यानी वालदा है कोई बहन है महरम है तो वो पीछे एक हाफिज़ है, पीछे घर वाले जो अपने महरम है खड़े हो गए, तो फरमाते थे कि हमारे यहाँ सारी रात नवाफिल में कुरान सुनाने में गुजरती थी, क्योंकि नवाफिल में 4 से ज़्यादा मुक्तदियों की इजाज़त नहीं होती थी, 4 मस्तूरात बदलती रहती थी, कभी किसी ने सुन लिया एक चंद रिकतें, किसी ने सुन ली फिर वो बदल गए दूसरे आ गए। तो लेकिन वालिद साहब मुसलसल पढ़ते रहते थे तो तरावी तकरीबन सारी रात में पूरी होती थी, यानी घर में जो पढ़ते थे उसके बाद वो रात भर पढ़ते रहते थे। मस्जिद से फर्ज पढ़ने के बाद मकान पर तशरीफ़ ले गए, सेहरी तक तरावी में 14-15 पारे पढ़ते थे। उनका एक जो है बुज़ुर्ग का किस्सा है कि 20 रमज़ानुल मुबारक को अलिफ लाम मीम से कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक तक एक रिकत में और दूसरी रिकत में कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर सेहरी के वक्त अपनी वालदा से कहा कि 2 रिकत मैंने पढ़ा दी, अब 18 आप पढ़ ली। यहाँ का नहीं मुस्तरद किस्सा इंडिया का, 18 आप पढ़ लीजिए। तो भाई ये जो है फिर उसमें आगे आएगा कि वहाँ की जो है फिर घर वालों की और बच्चियों की और बच्चों की कितना जो है वो शौक होता था रमज़ान में एक एक लम्हा कुरान। तो ऐसे लोग गुजरे हैं हम उनसे जो है बचपन में, बच्चों को कहते थे तुमने कुरान याद कर लिया अब छत पर बैठ जाओ दोहरा कर आओ फिर नाश्ता मिलेगा, और बच्चा बैठ के जोर दोहरा कर आ रहा। तो फिर अल्लाह सुबहान तआला ने उस ख़ानदान से इतना काम लिया, ये जो सारे जो दावत की मेहनत पूरी दुनिया में चल रही है वही ख़ानदान है, उसमें अल्लाह ने बहुत बरकतें अता फरमाई। अल्लाह ताला हमें जो है कुरान की अजमत और कुरान शरीफ की जो है इज़्ज़त हर वक्त का पढ़ना नसीब फरमाए, उससे जो है फरिश्तों का साथ अल्लाह ताला की माहियत और ऐसी ऐसी बरकतें मिलेंगी। फरमाते हैं हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए थे, फरमाने लगे कि कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, जितना चाहो ले लो जितना चाहो ले लो, जिसको अल्लाह ने कुरान अता फरमाया तो और किसी चीज़ की तरफ वो ललचाना नहीं चाहिए उसको, उसको इतनी ही बड़ी दौलत मिली कि बच्चे ने अगर हिफ्ज़ कर लिया माशाल्लाह सारी जो है उसको दुनिया भर की दौलत मिल गई सुभान अल्लाह। अच्छा अगला सबक हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो है जज़ाउल आमाल हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़मून, में वो फरमाते हैं कि गुनाह करने से दुनिया में क्या नुकसान है और नेकी करने से दुनिया में क्या फ़ायदा है, आखिरत में तो हो गई लेकिन लोगों को पता है वो यहाँ की बताओ फिर करेंगे, तो इस वजह से उन्होंने किताब बनाई उसमें कि गुनाह छोड़ दोगे तो दुनिया में ये फ़ायदे मिलेंगे और नेकी करोगे तो दुनिया में ये फ़ायदे तुम्हें यानी मिल जाएंगे। नुकसान ये है कि गुनाह करने से दिल का इत्मीनान जाता रहता है, परेशान सा हो जाता है, हर वक्त खटका लगा रहता है, किसी को खबर ना हो जाए, कहीं इज्जत में फ़र्क ना आ जाए, कहीं कोई बदला ना लेने लगे। एक नुकसान ये है कि गुनाह करते करते दिल में वही चीज़ बैठ जाती है, हत्ता के जो है मरते वक्त कलमा भी मुंह से नहीं निकलता, बल्कि जो काम जिंदगी में गालिब थे वही उस वक्त उसके मुंह से निकलते। एक ताजिर ने अपने एक रिश्तेदार की शिकायत बयान की कि मरते वक्त उसको कलमे की तलकीन करते थे और वो ये बक रहा था कि कपड़ा बहुत नफीस है, ख़रीदार बहुत खुश मामला है वगैरह वगैरह, वो कह रहे थे कलमा पढ़ो तो वो कह रहा था कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है और ये ख़रीदार बहुत अच्छा है। आखिर इसी हालत में जो है दुनिया से चला गया। किसी फ़कीर की हकायत है कि मरते वक्त कहता था कि अल्लाह के वास्ते एक पैसा एक पैसा एक पैसा, ये मांगते मांगते। एक आदमी को जो है आखिर वक्त में कलमा पढ़ाने लगे, कहता कि आह मेरे मुंह से नहीं निकलता। कोई कहने लगे कि कोई मेरी ज़बान पकड़ लेता है, कोई कहने लगे कि मैं मुझसे क्या पढ़वाते हो मुझको इससे क्या फ़ायदा हो सकते नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें। उस वक्त तलकीन ये है कि जो आदमी दुनिया से अगर जा रहा हो उसको ज़बरदस्ती ना कहे कि मियाँ कलमा पढ़ो, بلکہ اس کے سامنے خود آہستہ سے کلمہ پڑھنے لگیں اپنے ذکر کے طور پر لا الہ الا اللہ، تو اللہ توفیق دے تو اس کو بھی ہو جائے گی. اور وہ ایک دفعہ پڑھ لے تو دوبارہ نہیں کہنا چاہیے کہ میاں اب تم 5 منٹ اور زندہ رہے پھر پڑھو، اس پہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، وہ بہت مشکل میں ہوتا ہے. ایک دفعہ پڑھ لی، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے زندگی ایمان کے ساتھ گیا. یہ ساری ترغیبیں ہمارے اپنے واسطے ہیں. یہ پہلے بتائی تھی کہ جو کوئی نگیٹو چیزیں پڑھی جائیں گی اس حلقے میں تو وہ مہربانی کر کے اللہ کے واسطے کسی دوسرے پہ نہیں لگانا، جو فلاں شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو دیکھیے وہ جو ہے اچھی اچھی چیزیں بولتا ہے، وہ ہم نے حلقے میں پڑھا تھا. دوسرے آدمی کے واسطے نہیں پڑھ رہے، یہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی کو چیک کروں کہ میں کہاں کہاں میرے اندر کمی ہے. دوسرے کا معاملہ اللہ سے، وہ کتنا بڑا ولی ہے، ابھی توبہ کر کے حرم شریف جا کے پاک صاف ہو کے جنت کے اعلیٰ درجات میں چلا جائے گا. ابھی کافر ہے تو ابھی اللہ مسلمان کر دیں گے اور کہاں چلا جائے گا، بڑا اللہ کا ولی ہو جائے گا. دوسرے کے بارے میں ہمیشہ بہت اچھا گمان رکھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اپنے واسطے پڑھی جا رہی ہیں، یہ دعویٰ ٹیچنگ کے واسطے نہیں ہے کہ بھائی فلاں آدمی کی زبان خراب ہے، اس کا کلمہ نہیں نکلا، اس کی جو ہے سنت نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے، بلکہ یہ ساری اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا گناہ کرنے سے دنیا کے نقصان، کہ آدمی جو ہے مرتے وقت نا امید ہو گیا، پریشان ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایسی بلا سے ہمیں محفوظ رکھے. دوسری چیز ہے کہ نیکی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، اس کا ایک مضمون ہم لوگ پڑھتے ہیں، نیکی کرنے سے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ نیکی کرنے سے زندگی میں اللہ کی بشارتیں، گلیڈ ٹائڈنگز ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، کہ آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ سے ڈرتے تھے. اور کیا ہوتا ہے اس کی مثالیں، بعض دفعہ آدمی اچھا خواب دیکھ لیتا ہے، اچھی نیکی کرتے کرتے ذکر کیا، تلاوت کی، اب اچھے اچھے خواب آئیں گے. ان میں بھی ہے کہ خواب جو ہے دوستوں کے سوا اور جو ہے علماء بزرگان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے نہیں کہنا چاہیے، خصوصاً ایسا کوئی آدمی جو غلط بات پلٹ کے کہہ دے اور اس کا نقصان ہو. خواب دیکھا خود ہی خوش ہوتے رہے، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ مجھے اتنی اچھی آپ نے بشارت عطا فرمائی، ایسے لوگوں سے نہ کہے کہ اس سے وہ اس کو نقصان ہو. اچھا خواب دیکھا، مثلا دیکھا کہ جنت کی سیر ہو گئی، اللہ کی زیارت ہو گئی، اس طرح کی خواب اہل اللہ حضرات کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. نیکی کرنے سے فرشتے مرتے وقت خوشخبری سناتے ہیں. یہ ترجمہ ہے آیت کا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہیں پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، اسٹیڈ فاسٹ، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں. جیسے مفسرین نے فرمایا کہ تم کوئی خوف نہیں کرو، کوئی غمگین نہیں ہو، تم کو جو ہے جنت کا وعدہ ہے. فرشتے آتے ہیں، ہم لوگ پڑھیں گے حلقے میں پوری فرشتوں کی، 500 فرشتوں کی قطار، ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ، جنت کی چیزیں، یعنی مرتے وقت آدمی کو اتنا اعزاز و اکرام سے لے جاتے ہیں، دنیا میں کسی پریزیڈنٹ کو بھی نصیب نہیں ہوتا. تو آدمی جو ہے ڈرے نہیں کہ بھائی اور پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. اگر نیک عمل کیا ہے تو بہت اچھا جو ہے ہر آسمان میں استقبال ہوگا، آدمی خوش خوش جائے دنیا سے، ماشاءاللہ، جیسے صحابہ کا حال تھا، بڑے خوش خوش جاتے تھے. اللہ اکبر. تو بھائی اس میں یہ ہے کہ نیکی کا ایک اثر یہ ہے کہ کسی معاملے میں آدمی اگر ڈاؤٹ ہو کہ یہ کام کیسے کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بشارت مل جاتی ہے، اس طرف رائے، اس طرف اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے جس میں سراسر فائدہ ہو، گویا اللہ سے مشورہ مل جاتا ہے. اس میں پھر استخارے کی دعا کا ذکر ہے کہ ہم دین دنیا کا کوئی بھی اہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لیں، دو رکعت نماز پڑھیں، استخارہ کی دعا پڑھیں، جو کسی حلقے میں اس کو پڑھ لیں گے، اب کتابوں میں ملتی ہے. تو ہر کام میں اللہ سے مشورہ، اللہ کل میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس کو میں کس طریقے سے کروں، یہ چیز میں یہ ڈیل کرنے جا رہا ہوں اس کو کس طریقے سے کروں کہ آپ راضی ہو جائیں اور شریعت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹے. تو اللہ کو آدمی اپنا دوست بنا لیا ہے، چلتے پھرتے مانگ رہا ہے اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دیجیے، یہ بھی چیز خراب ہو گئی، اس کو یہ کیسے میں ٹھیک کروں. جیسے ہم لوگ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، دعا کو ایسے مانگنا چاہیے جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. رسمی نہیں کہ دو چار عربی کی چیز پڑھ کے آنچ پھیر کے چلے گئے مسجد میں کہ دعا ہو گئی مسجد میں، ایسا نہیں. دعا بیٹھ کے کسی وقت جم کے 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ سے آدمی مانگے، جب فرصت ہو، ویکینڈ میں، رات میں، صبح میں، 5 منٹ. اسی کے لیے ساری دعاؤں کی کتابیں اور اسکرپٹ جو ہے تعلیم کے واسطے ہیں کہ شوق پیدا ہو. پھر اصل دعا دل سے نکلے گی، آپ کی اپنی دعا جو اپنی زبان میں ہوگی، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو جو ہے یہ بعض طاعات میں اثر ہے کہ تمام مہمات یعنی مشکل کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرما لیتے ہیں. نیکی کا یہ خاصہ ہے. فرمایا کہ جو آدمی دن میں صبح 4 رکعت پڑھ لیا کر تو ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا. صبح میں اشراق کے بعد 2 + 2 4 رکعت پڑھ لیے، سورہ یاسین پڑھ لیے، دن بھر کے پورے کام اللہ آسان کر دیں گے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لے، तो सारे काम जो है वो अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे। अल्लाह, ये जो है आखिर में हमारे पास एक सबक है दुआ से पहले, जिसमें जो है दुनिया की हकीकत और जो है शुक्र के बारे में और इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि अभी वक्त कम है। अगर बहुत सारे लोगों को वजू वगैरह का तकाजा हो तो हम लोग जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, वरना अगर सिर्फ नमाज को ही जाना है तो हम लोग पढ़ते रहें। तो अगर हो तो अदब से, मतलब वो खुद जा सकता है, क्योंकि हम लोग ख़त्म करके जाएंगे तो नमाज का ही वक्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ये जो है शुक्र के बारे में एक मजमून है। अल्लाह ताला हमें जितनी नेमत अता फरमाते हैं, ब्लेसिंग, उनको अल्लाह का गिफ्ट समझना शुक्र है। ये अल्लाह का गिफ्ट है, और उस पर फख्र व गुरूर करना उसी नेमत पर, ये एरोगेंस है। इवेंट एक ही हुआ, चीज़ एक ही मिली, अल्लाह ने दीन दुनिया की कोई भलाई अता फरमाई, कोई जो है कुरान तिलावत जिक्र, कोई हज उमरा, कोई अच्छा मकान गाड़ी, अल्लाह ने कोई नेमत अता फरमाई, उस पर हम कैसे रिएक्ट किए? अगर हमने उसको समझा कि ये अल्लाह का गिफ्ट है तो ये शुक्र हो गया, और अगर हमने उस पर फख्र व गुरूर किया, थोड़ा सा नामो नमूद के मेरे को इतना अच्छा मिला, देखो मैं पहले ही कहता था मुझको मिलने वाला है, तो वो किब्र में दाखिल हो गया, एरोगेंस। ये जो है यानी खुशी में उछलना कूदना या एक दूसरे पे बताना कि मेरे पास इतना है तुम्हारे पास इतना है, ये यहाँ नहीं करना चाहिए, ये आखिरत में करने का है। वहाँ जब सारा काम सेट हो गया, मिल गया वो, अब भी वो फरमाएगा कि खुशी सबको दिखाता रहेगा कि देखो मैं नहीं कहता था मुझको ऐसा मिला है, वहाँ पे करने का काम है, ये दुनिया में नहीं करने का काम है। दुनिया में जो कुछ मिला खामोशी से खुद ही खुश होते रहो, अल्लाहुम्मा लकल हम्द लक शुक्र, अल्लाह आपने दिया मैं इस काबिल नहीं था, समझ रहे? दूसरों पे यानी कंपैरिजन नहीं है, तुमको कितना मिला, मेरी इतनी तुम्हारी इतनी तनख्वाह, ऐसा तुमको कितने, उससे आदमी का यानी बड़ा नुकसान हो जाता है। दीन का, दुनिया का ऐसा नहीं करना चाहिए। शुक्र करने से नेमत बढ़ती है, माल, औलाद, घर, खूबसूरती, इल्म, ताकत, सेहत, जिस चीज़ में शुक्र करेंगे वो चीज़ और बढ़ जाएगी, जिस चीज़ में शुक्र करेंगे वो चीज़ और बढ़ जाएगी, कुरान शरीफ की जो है ना आयत से साबित है। शैतान का हमला आदमी पे चार तरफ से होता है, दाएं से, बाएं से, आगे पीछे से। उसने कहा कि शुक्र करने वाले कम होंगे, शैतान ने ये अल्लाह से जो है ना प्रॉमिस करके रखा है, उसने कहा कि मैं हमला करूंगा, शुक्र करने वाले बहुत कम पाएंगे आप, अल्लाह से कह के आया पहले दिन। तो हम जो है शुक्र करके शैतान को बीट करें, उसको शिकस्त दें, जितना शुक्र करेंगे शैतान भाग जाएगा। खाकर शुक्र करने वाला रोजेदार साबिर के सवाब पा लेता है। एक आदमी ने रोजा रखा, उस पर सब्र कर रहा है, एक आदमी ने खाना खाया उस पर शुक्र कर रहा है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द लक शुक्र, अल्लाह आपने खिलाया, उसका उतना सवाब मिल गया, ये शुक्र का है। शुक्र जन्नत में ले जाएगा, सबसे पहले बुलाए जाने वाले जन्नत में, जो हर हाल में अल्लाह की तारीफ करते हैं। और जन्नत में और कोई इबादत नहीं है, नहीं कहा जाएगा कि रात को उठो, वजू करो, जाओ जो है तहज्जुद पढ़ो, जाके हज करके आओ, और जन्नत में कोई मशक्क़त के कोई काम है नहीं जन्नत में, लेकिन अल्लाह की तारीफ और शुक्र सांस की तरह जारी होगी जन्नत में, ये तस्बीह जारी होगी। अल्लाह का शुक्र जन्नत में भी ले गया और जन्नत में जारी भी रहा, ऐसी इबादत है, इतनी ऊँची इबादत है, फरमाते हैं जन्नत में भी ले गया और वहाँ जाके जारी भी हुआ, कंटिन्यू भी रहा। लेकिन आदमी ना शुक्रा है, होता यह है कि हमारे ऊपर हजारों नेमतें हैं लेकिन एक मुश्किल से घबरा जाता है, ये एक मुश्किल बहुत बड़ी। उसकी मिसाल कोई बताते हैं कि 40 साल आदमी के दांत ने खिदमत की, लेकिन एक दांत में दर्द हो गया, तो आदमी कहता है कि भाई ये जब मैं छोटा था बचपन में, ये दांत जब निकल रहे थे तब भी बड़ी तकलीफ दी थी इसने मुझे, और अभी जब ये जा रहा है तब भी कमबख्त जान नहीं छोड़ता, बहुत तकलीफ दे रहा है। और ये भूल गया कि 40 साल जो है ना 3 टाइम्स ए डे कितनी ग्राइंडिंग करके, कितने जो है यानी मील्स और इतने मज़े उठाए, खिदमत की, लेकिन नाशुक्रा है। तो फरमाते हैं कि दांत जो है वो खिदमत कर कर के घिस गए, लेकिन जबान जो है वो नाशुक्री करते करते नहीं घिसी। जबान ऐसी चीज़ है घिसती नहीं है, पल ख़त्म भी नहीं होती इसकी, ना कोई हर चीज़ को चार्ज करना पड़ता ना, आग बंद करो बंद करो, जबान को बस हर वक्त आदमी बोलता रहे तो जबान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है कि उसमें नाशुक्री ना हो जाए। सारी उम्र किसी की खिदमत की, आखिर में कहते भाई तुमने कुछ नहीं दिया, अब ये बहुत नाशुक्री की बात है। इसमें जो है ना ये इन चीज़ों से इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि आदमी हर आन नेमतों में गर्क है, और अगर एक यानी पुर्जा ख़राब हो जाए तो लाखों हज़ारों खर्च करने पड़ते हैं। मतलब ना किसी का एक गुर्दा जो है किसी का हटा के मशीन लगाई जाए डायलिसिस की, पूरा कारखाना चाहिए होता है, इतनी कोई छोटी सी चीज़ हो तो जो हम लोग पढ़ेंगे उसको कि उसमें इतने इतने यानी मिलियन उसमें चीज़ें होती हैं कुदरती कि वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती साइंस, वो पूरे पूरा फैक्ट्री चाहिए होती है उसके उसको चेंज करने के लिए। तो आदमी को जो है कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, आँख भी ठीक है, कान भी ठीक है, नाक दांत हाथ पांव दिल दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हजम हो रहा है, नींद आराम से आती है, घर वाले हैं, पास पड़ोस हैं, बच्चे हैं, गाड़ी है, घर है, ये जो है अच्छा टेम्परेचर है घर में, आमदनी का जरिया है, मज़ेदार खाने मिल रहे हैं, हलाल गोश्त दरवाजे पर रखे जाते हैं, यानी इस तरह की बातें होनी चाहिए हमारे घरों में चर्चा की। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हज़ारों चीज़ है, न पानी की शॉर्टेज है, न बिजली जाती है, न यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव वेव है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलिल्लाह। यानी दुनिया में लोग कैसी कैसी चीज़ों से परेशान है सारे असबाब होने के बावजूद, और जो है बड़े बड़े अकाबरीन हजरात हमने देखा, हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को छोटे से दस्तरखान पे, ये एक दो सालन रखे हैं प्याला, इतना छोटा सा दस्तरखान है, वो बैठ के खा रहे हो, कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, यानी खाने के वक्त तस्बीह पढ़ रहे हैं। फिर एक दिन फरमान लगे कि भाई आज की चाय हम खुद बनाएंगे, कहीं से लाने की जरूरत, यानी बड़े अकाबरीन का हाल जो है ना हम लोगों ने ये देखा। जो भाई थे 10 साल पहले यहाँ मौजूद, उन्होंने भी देखा होगा। तो भाई ये जो है, अब इसमें एक चीज़ का इलाज है जो हमारे अपने दिल में है, बाज दफ़ा इन चीज़ों की वजह से हमें परेशानी होती है, रिस्क की तकसीम अल्लाह ताला की तरफ से, जिसको जो कुछ दिया इम्तहान के लिए दिया, फला को मिला मुझको नहीं मिला, ये अल्लाह ताला पे एतराज़ है, इससे बचना चाहिए। उसके बजाय दुआ कीजिए कि या अल्लाह उसको भी दीजिए बरकत और मुझको भी दीजिए, बल्कि उम्मत में जिसको जितना दिया है उसको फितने से बचाइए। दूसरी बात यह है कि जिस आदमी को जितना मिला है वो उसके लिए एग्जामिनेशन हॉल का पर्चा है, उसको अच्छा सवाल क्यों आया, मुझको दूसरा सवाल क्यों आया, इसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा, पर्चा आपका रह जाएगा, तो आप अपना पर्चा हल कीजिए। जो आपका आया, जो हमारी सराउंडिंग है, सरकमस्टेंसेज है, वो हमारा एग्ज़ाम का पर्चा है, उसमें सब्र शुक्र से हम उसमें ए ग्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन अपने पर्चे को छोड़ के दूसरे पर तराश शुरू कर दिया, उसको इतना मिला, इसको इतना मिला, मुझको नहीं मिला, तो ये ऐसे ही है कि इम्तहान में अलग अलग पर्चे थे, आपने अपनी डेस्क छोड़ के दूसरों के पर्चे ढूंढते रहे, 3 घंटे जाया कर दिए उसने। तो उसमें एक और बात है, पॉइंट्स है, किसी को बात समझ में आ जाए, हमारा अपना सबक है भाई, खाना खा रहे हैं अपनी प्लेट से खाइए, दूसरे के प्लेट में क्या है वो उससे फ़ायदा ले रहा है, मुझको उससे क्या मतलब, दूसरे की प्लेट से तो निकाल के नहीं खा सकते। या आदमी यूँ समझे कि आखिरत की मंजिल की तरफ एक सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता, उस पर तेज़ी से जा रहा है आदमी, जैसे हाईवे पे गाड़ी चला रहा है, अब गाड़ी चलाते हुए आसपास की गाड़ी में नहीं झांकते, किसकी सीट अच्छी है, किसमें कौन बैठा है, साथ में किसके कौन है, अब उस पर आदमी अगर एतराज़ शुरू कर दे हर वक्त, तो उसकी क्या होगा, अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये दुनिया के जो हमारे चीज़ें हमें मिली हैं या नहीं मिली हैं, उनका बस यही हाल है, सब जाना है सीधे सीधे सिराते मुस्तकीम पे, तो जो है किसको क्या मिला उसमें बिला ज़रूरत कुढ़ना ललचाना, उससे अपना नुकसान है। मखलूक से जो एक्सपेक्टेशन रखेगा वो डिप्रेशन का शिकार होगा, फलां आदमी से मुझको फ़ायदा होता, ये मुझको फ़ायदा पहुंचाता, बस अब उसको हर वक्त का गम होगा, सौरो होगा। एक शेख थे, वो पहले जिस मोहल्ले में रहते थे, हर पड़ोसी का मकान अच्छा, सवारी अच्छी, तो ख्याल आते थे, अपनी नेमतें कम लगती थी। फिर गरीबों के मोहल्ले में चले गए जहाँ दूसरे सारे गरीब थे, तो अब जो है अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, हर चीज़ में मेरी भी सवारी अच्छी, मेरा घर भी सबसे अच्छा, माशा अल्लाह, अल्लाह ने इतना अता फरमाया। दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देख के शुक्र करना, दीन के मामले में मेहनत करने वालों से मोटिवेशन लेना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर खड़े रहते थे नमाज में, और इतने लोग माशाल्लाह इतने कुरान ख़त्म कर लेते थे, मुझको भी थोड़ी बहुत कुछ कोशिश कर दी। दूसरे को क्यों मिला उससे छिन जाए, ये हसद है, ऐसा बोल के सरासर अपना नुकसान किया, नेकियाँ बर्बाद, उसके बजाय ये कहते हैं या अल्लाह उसको और अच्छा दे, और मुझ फरिश्ता आपके लिए दुआ करता कि इसको भी उतना ही दीजिए, तो एक ही मिनट में काम हो गया, फरिश्ते ने आपके लिए दुआ कर दी कि अल्लाह उसको भी दीजिए घर सवारी अच्छी चीज़ें दीजिए। तो किसी इंसान की बदखाही ना हो कि उसको नुकसान हो, हत्ता कोई दुश्मन भी हो उसकी, यानी बदखाही नहीं हो ये कि इसको नुकसान हो, इसको जो है यानी मार पड़े और इसका नाश हो, किस तरह सब हिदायत पा जाएँ, सब कामयाब हो जाएँ, जन्नती हो जाएँ, सीरत पाक में इस तरह के सबक, अगर हम इन मजामीन पे थोड़ा सा गौर कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, दुनिया की मोहब्बत, चीज़ों की हवस, ललचाना, हसद, रकाबत, जलन, दूसरे की तरक्की पे कुड़ना, इन सब चीज़ों का इलाज हो जाएगा, और हम जो है अपने यानी आखरत में अक्सर असल जो हमारा सबक है अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत, उसमें हम जो है पूरे तौर से चलने लगेंगे। तो ये जो है हमारे अपने फ़ायदे के लिए, ये नहीं है कि दूसरे को जाकर बताने लगे मियाँ तुम्हारे अंदर हसद है, तुम्हारे अंदर जलन है, ऐसा नहीं, खुद अपने को देखा मेरे अंदर कोई चीज़ है, किसी शेख से बुजुर्ग से मशवरा किया, दुआ कराई, अल्लाह से तौबा की, दिली दिल में अपना काम अल्लाह से ठीक कर लिया, इसलिए पढ़े जाते हैं मज़ा भाई। अल्लाह ताला हमें जो है सुने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर दुआ होगी कि नमाज का वक्त करीब है, इस तरह हर हफ्ते इस तरह मगरिब के बाद साथी जमा हो जाएँ, और जितनी जल्दी आएँगे 1 घंटा इंशाल्लाह बात होकर मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़े जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلي وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ یا رحمان یا کریم یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ یہ جتنے حاضرین حضرات ہمارے بھائی بہن جو تشریف لائے انہوں نے سنا، یا اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری کامل توبہ قبول فرمائیے. یا اللہ ہر طرح سے فتنے سے، شیطان سے، نفس سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہر وقت کا ذکر، شکر، اچھی نیتیں، دعا، یا اللہ نیکیوں کے پہاڑ، جنت کے اعلیٰ درجات ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ ہر فتنے سے، برائی سے، مصیبتوں سے ہمیں، گھر والوں کو، بچوں کو محفوظ فرمائیے. یا اللہ ہمیں ہدایت کے کام میں قبول فرمائیے. یا اللہ ہمیں جو ہے ہر وقت جو ہے یا اللہ سنتوں کا شوق، آخرت کی فکر، جنت کے درجات، اور دنیا میں بھی حیات طیبہ، آسان رزق، آسان زندگی، صحت، طاقت، عافیت عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. برحمتک.